सम्यक् ज्ञान चंद्रिका लब्धि सार क्षपणा सार लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धे सिद्धांत चक्रवर्ती ने लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक् ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार ढूंढारी भाषा में वो भाषा टीका लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद अभी हम देख रहे हैं। हम आए हैं पृष्ठ संख्या 42 पर, 42। अपना प्रथम ऑप्शन सम्यक् का प्रकरण शुरू हो गया है। तो प्रथम में प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति की योग्यता क्या क्या उसमें कंडीशंस हमने देखी उसको देखते हैं। आप बताएंगे? हाँ, चतुर्गति वाला, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त, गर्भज, यानी विशुद्ध वाला, विशुद्ध परिणाम, यानी मंद कषाय रूप विशुद्धि वाला। बहुत सारी बातें बताए हैं और साकार ज्ञानोपयोग वाला भव्य एक और जागृत भी होना चाहिए। ये दो कंडीशंस उसमें नहीं लिखी थी परंतु बाद में बताई थी टीका में। और क्या? करण लब्धि के पश्चात मिथ्या दृष्टि, चतुर्गति वाला मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, क्योंकि सम्यक् दृष्टि हो वेदक तो द्वितीय ऑप्शन करेगा। प्रथम ऑप्शन करने के लिए कंडीशन क्या है? वो मिथ्या दृष्टि होना, ये भी कंडीशन है उसकी। वो फिर शादी हो या अनादि हो, शादी होगा तो क्या क्या है उसकी बातें हम देखी थी कल बस विस्तार से। एक है कि
जीतू भाई आप बताएं, प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के प्राप्ति के लिए कौन कौन सी कंडीशन हमने देखी थी पहले बताएं, और आपको सुनना है बहुत कुछ सुनाएंगे। बोलो,
चातुर्गति वाला, शादी आनादि, संगी, पर्याप्त, गर्भज, मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारक, साकार ज्ञानोपयोगी, भव्य, जागृत और करण लब्धि।
बहुत अच्छा, जितने आएगी उतनी बताओ ना। हाँ, चार गति वाला, पहले चार गति वाला कह। हाँ, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। गर्भज के पहले संगी पंचेंद्रिय कहना चाहिए। मंद कषाय रूप विशुद्धता धारी, जागृत होगा, साकार ज्ञानोपयोग वाला है, और वो पांच लब्धि में से अंतिम जो करण लब्धि है उसके पश्चात सम्यक्त्व की प्राप्ति, यानी प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व प्राप्त करता है।
ये शुरू शुरू में लगता है कि ये क्या है क्या, लेकिन ये अभी हमको बराबर ध्यान में आएगा, आगे की बातें आसानी से। यानी जब कहते हैं कि एक इंद्र से चार इंद्र तक के जीव को सम्यक्त्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो संगी होना चाहिए, मन सही। ये
यानी हमें ये बात पता चलती है कि असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव अभी इस पर्याय में मिथ्या दृष्टि ही है और उनमें सम्यक तो प्राप्ति की योग्यता भी नहीं है। ये बात यहाँ जो कंडीशंस बताई है तो उस पर से निष्कर्ष निकलता है।
कल आपने बात बताते हैं ना अर्पित और अनर्पित की बात इसमें लगती है, संगी पंचेंद्रिय चाहिए पर्याप्त चयन है पर्याप्त जीवन को उस अवस्था में सम्यक्त्व नहीं
होता। सम्यक्त्व की प्राप्ति किसको होती है उसकी बात चल रही
है, यानी ऐसा हम दोनों तरफ से सोचे।
गर्भवत जो कहा खाली मनुष्य और तीरथ के
उसकी अपेक्षा क्योंकि देवनाग के उपपाद वाले है यानी समूर्छन के नहीं होता है इतनी बात बता रही है। सम्मूर्षण संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव होते हैं, करोड़ पूर्व के आयु वाले भी होते हैं, यानी अकेले वो सम्मूर्षण यानी लब्धि पर्याप्त ऐसा नहीं समझना, परंतु इनमें वेदक सम्यक तो हो सकता है क्षोभ्रम सम्यक प्रथम क्षम सम्यक तो नहीं होगा इतनी बात नक्की है। तो हमने ये सभी पर चर्चा की है यानी किसके नहीं होगा ये किसके होगा ये भी देखा और उसी वाक्य से और उसी कथन से किसके नहीं हो सकता ये भी बात हमने देखी। उसके बाद तीन नंबर की गाथा में हमने ये पांच लब्धियों के नाम देखे थे। वीरेश भाई याद है आपको? हाँ, क्षोभ्रम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, ये पांच नाम आप रिपीट करेंगे। विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। सिलेबस आप रिपीट करेंगे? करण लब्धि। तो इसमें से चार लब्धि तो सामान्य होती है, इसका अर्थ भव्य के भी होती है और अभव्य के भी होती है, परंतु अभव्य जिसको कहेंगे कौन से कर्म के उदय से है अभव्य? हाँ, वो तो पारिणामिक भाव है, किसी कर्म के कारण नहीं है। ऐसे उस जीव की पर्यायोग्य योग्यता है कि उसमें समय दर्शन होने वाला ही नहीं कभी, तीन काल। फिर प्रायोग लब्धि तक के यहाँ जो भी कर्मों में जो कोई वेरिएशन होने वाली है और परिणामों में वो सब उनके भी होगी, परंतु वो जीव आगे करण लब्धि में नहीं एंटर। ये बात यहाँ अब तक हमने देखी, अब हम आगे बढ़ेंगे। 42 पृष्ठ पर आए हम और चार नंबर की वहाँ गाथा पढ़ेंगे।
कममल पड़ सत्ति पड़ समय अनंत गुण विहीन कमा हो दूनु दीर दिजदा तदा खो समलती दू कर्ममल पटल शक्ति प्रति समय अनंत गुण विहीन क्रमा भूत्वा उदीर्यते यदा तदा क्षयोपशम लब्धिस्तु।
क्षोभ्रम लब्धि कब कहेंगे उसका यहाँ वर्णन है, टीका पढ़ेंगे। देखो वैसे डायरेक्ट गाथा में से भी अर्थ समझ सकते हैं हम। कर्म मल पटल शक्ति, कर्म रूपी मल के पटल है, पटल है हम आवरण कहेंगे उसका जो कुछ लेप है वहां पर, यानी कर्मों से जीव बंधा हुआ है। तो वो कैसे होती है? प्रति समय अनंत गुण विहीन क्रमा। ये कौन से कर्मों की बात है? तो अप्रशस्त कर्म, और उसमें तो कहेंगे ज्ञानावरण आदि समस्त अप्रशस्त, यानी ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोनी है, अंतराय, वो सब अन्य भी अघाती के भी अप्रशस्त क्या हो रहे हैं उनमें? प्रति समय शक्ति जो है अनंत गुणाहीन होना, यानी अनंत वे भाग होकर उदय में आना। सत्ता में भले पड़ा है अनंत अनंत अनुभव, परंतु उदय में कैसे आती है? एक समय में जितनी, क्योंकि ये सारी जो हमने देखी थी अंतर्मुख में रहती है क्षोभ्रम लब्धि भी, तो प्रति समय क्या हो रहा है? जितना अनुभाग उदय हो रहा था दूसरे समय में उसके अनंत विभाग, तीसरे समय में उसके अनंत विभाग, अनंत वे भाग के लिए यहाँ लिखा अनंत गुणाहीन। देखो हम कहेंगे अगर 64 संख्या है और वो चार गुणाहीन हुई तो उसका अर्थ क्या है? चौथे भाग, फोर टाइम्स नहीं, चार गुणाहीन हीन हुई, चार गुना हुई नहीं कहा, हाँ, तो उसका अर्थ होता है चौथे भाग प्रमाण, यानी 64 का चौथा भाग कितना होगा? तो 16 होगा। तो ऐसे यहाँ कैसे हो रही? अनंत गुणाहीन, जितना अनुभाग एक समय में उदय में आ रहा है, दूसरे समय में उसका अनंतवा भाग उदय रूप होगा। यानी हरेक निषेक में अलग अलग वेरिएशन पड़े हैं, तो किस रूप में उदय में आएगा? तो हर समय अनंतवा भाग, अनंतवा भाग, फिर वो निषेक खिर गया, फिर और नीचे निषेक आया, उसमें उससे भी अनंतवा भाग उदय रूप होगा। तो ज्ञानावरणादि सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अनंत गुणा हीन हीन होकर उदय में आता रहता है, तब हम कहेंगे क्षोक्षम लब्धि। अब इसकी टीका पड़ेगी, इसी क्षोक्षम लब्धि से हम विशुद्धि लब्धि को भी प्रूव करेंगे। कैसे? जैसे मौन्य का भी अनुभाग अनंत गुणा हीन होकर उदय में आ रहा है, मिथ्या तो मंद पढ़ ही रहा है, परंतु कषाय भी मंद होकर उदय में आ रहे हैं, और प्रति समय अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन, यानी यहाँ मंद कषाय रूप विशुद्धि बढ़ रही है, तो जिस समय क्षोभ्रम लब्धि है उसी समय विशुद्धि लगती है। फिर भी उसको कारण कार्य का उपचार करके पहला नंबर हम क्षोभ्रम लब्धि को देखेंगे और दूसरा विशुद्धि। वैसे जब होगी, एक बार इसकी देशना हुई है तो जब जब होती तो सब एक साथ होती है, चार तो एक साथ शुरू भी होती है, परंतु कथन में और सबसे पहले जिसको प्राप्त होती है उसमें हम क्रम रखेंगे और इसी क्रम से होती है ऐसा कहेंगे भी। तो हम अभी टीका पढ़ेंगे इसकी। कर्मों में मल रूप, यानी कर्मों में भी मल किसको कहा? तो जो अप्रशस्त कर्म है उसको मल रूप। तो कर्मों में मल रूप जो अप्रशस्त ज्ञानावरणादि का पटल अर्थात समूह, पटल का अर्थ समूह क्या, उसकी शक्ति अर्थात अनुभाग, वह जिस काल में समय समय प्रति यानी एवरी समय अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर, अनुक्रम रूप यानी एक समय में जितना उस दूसरे समय उससे अनंत बाबा, तीसरे समय में उससे अनंत बाबा उदय में आता है। देखो सत्ता में कैसा भी क्यों ना हो, फल तो जैसा जिस रूप से उदय में आता है उसको हम कहेंगे। यहाँ तो सारा निमित्त का कथन है, हो कर्मों का ऐसा उदय हुआ इसलिए जीव को लब्धि हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीव के परिणाम जीव में अपनी उपादान से होते हैं, कर्मों के जो कोई अवस्थाएं कर्मों में अपने उपादान से, ये तो हमने द्रव्यान योग में बहुत बार पढ़ा है और हर बार करणान योग के अभ्यास से शुरू में ही बता देते हैं, ये निमित्तों का कथन है, इसमें से उपादान से कार्य होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। नहीं तो पहले ही जीव की निमित्ताधीन बुद्धि अनादि से चली आ रही है और ऐसे कथन सुनकर तो और क्या करें, हमारे कर्म कभी हीन होकर उदय में आएंगे और हमें कब शोक्षम लगती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो उस काल में एक शोक्षम लगती होती, वो क्यों होती है कैसी होती है उसकी अभी बात कौन रखेंगे हम, बहुत विस्तार से पढ़ना है ना, तो कल ही मैंने बता दिया वो पंचलब्धि पढ़ना पुस्तक। उस काल में क्षोभ्रम लब्धि होती क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का अनंतवा भाग मात्र जो देशघाति स्पर्धक उनके उदय होने पर भी, उत्कृष्ट अनुभाग का अनंत बहुभाग मात्र जो सर्वघाती स्पर्धक उनके उदय का अभाव वह तो क्षय। अभी इसका पूरा अर्थ समझेंगे हम, बाकी सबको तो क्षोभ्रम की परिभाषा याद है, हम नए से फिर दोबारा देखेंगे। वे ही सर्वघाती स्पर्धक जो उदय अवस्था को प्राप्त न हुए हैं, उनकी सत्ता अवस्था वह है उपशम, उनकी प्राप्ति वह क्षोभ्रम लब्धि जानना। पहले हम क्षोभ्रम किसको कहते हैं उसकी बात देखेंगे। नलिंद है क्षोभ्रम की परिभाषा बताना।
वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का
उदय, भविष्यकालीन स्पर्धकों का सदवस्थारूप, और देशघाती स्पर्धकों का उदय,
क्षोभ्रम
अभी ये देशग्राही क्या है, स्पर्धक क्या है, पहले हमने स्पर्धक क्या है उसको देखा था, अनुभाग हमने अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा है। एक एक परमाणु में उसका अपना अपना अनुभाग है इसलिए उसको वर्ग कहा था। जिनमें जिनमें समान अनुभाग होता है उनको वर्गणा कहा था। ऐसे एक वर्गणा, एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद वाली दूसरी वर्गणा और एक अधिक वाली तीसरी वर्गणा, ऐसी अनंत वर्गणा होती है, उनके समूह को हमने स्पर्धक कहा। ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते। अब जीव के जो कर्म है, घाती कर्मों की हम पहले बात करते हैं। घाती कर्मों में दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, यह कर्म के दो प्रकार है, प्रकृति यानी कर्म। घाती कर्मों के नाम मालूम है आपको? हाँ बोलो, चार है, चार है। बोलो अश्विन भाई, चार कौन से? हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये चार कर्म है। ये तो मूल प्रकृतियां। अब इनमें ये सभी कैसे घाती कर्म है? अब इनके हरेक की अपनी अपनी, ज्ञानावरण की पांच प्रकृतियां है, दर्शनावरण की नौ है, मुनि की दर्शन मुनि की तीन है और चारित्र मुनि की 25 है और अंतराय की 5 है। तो ये जितनी 47 जो प्रकृतियां हैं उनमें से कुछ सर्वघाती प्रकृतियां हैं। ये प्रकृति सर्वघाती है और कुछ प्रकृतियां कैसी है? देशघाती है। ये भी प्रकृतियों की बात है। ये इनमें सब में अपने अपने स्पर्धक होते हैं, यानी अपने अपने अनुभाग युक्त परमाणु है अपने अपने, और हरेक में अपनी अपनी स्पर्धक की रचना होती है। ये तो बात हमें पता है। इनके जो अनंत है उसके चार भाग करके समझा, उसको नाम देके हमने देखा था। हाँ बोलो नलिन भाई।
लता,
दारू,
अस्थि और शय।
मिनिमम अनुभाग वाले वो लता भाग वाले है, फिर दारू भाग वाले, फिर अस्थि भाग वाले और शैल भाग वाले। शैल यानी एकदम टॉप मोस्ट जो मैक्सिमम अनुभाग वाले हैं, उत्कृष्ट की तरफ वाले सारे, वो शैल कहेंगे, और बाकी दो इन बिटवीन वाले। अब ये स्पर्धकों में हम सर्वघाती देशघाती देखेंगे। यहां तो हम प्रकृतियों में देखा। अब ये जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनके सभी स्पर्धक सर्वघाती हैं। यानी कौन कौन से है? शैल है, अस्थि है और दारू है। अब दारू नाम का जो, देखो ये है लता, देशघाती है। ये दारू के जो है उसका अनंत भाग अलग निकालना, ये देशघाती है, और अनंत बहुभाग है वो सर्वघाती है। अस्थि वाले सर्वघाती है और शैल वाले भी सर्वघाती है। मैंने सर्वघाती स्पर्धकों में सभी स्पर्धक, सर्वघाती प्रकृतियों में सभी स्पर्धक सर्वघाती है, यानी कौन से? शैल वाले हैं, अस्थि वाले हैं और दारू का बहुभाग वाले। देशघाती प्रकृतियों में क्या होता है? आप कहेंगे वो उसमें खाली देश है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रकृतियां देशघाती है उसमें शैल भी है, अस्थि भी है, दारू भी है और ये देशघाती भी, यानी उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी और देशघाती भी। विशेषता क्या हुई? सर्वघाती प्रकृतियों में सभी स्पर्धक सर्वघाती है, ये सर्वघाती स्पर्धक है। इसमें सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती है। देशघाती प्रकृति में क्या है? सर्वघाती भी और देशघाती भी, ये विशेषता है। अब इसके ऊपर से हमें क्षोभशम की परिभाषा समझ में आ सकती है। तो सर्वघाती प्रकृति हम, फॉर एग्जाम्पल केवल ज्ञानावरण, ये सर्वघाती प्रकृति है। सर्वघाती क्यों कहा? उसका उदय हुए तो केवल ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं है, उसने घात किया ऐसा नहीं है, ये कथन पद्धति है। और दो द्रव्यों के मिलकर कथन होता है वो उपचार होता है, वैसा है नहीं है, फिर भी हम उसी पद्धति से कथन करेंगे यहाँ। तो सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती है, तो केवल ज्ञानावरण का उदय हो और जीव को केवल ज्ञान भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। मति ज्ञानावरण प्रकृति कैसी है? देशघाती। हमारे आपका सबका मति ज्ञानावरण का उदय भी चल रहा है और हमारा मति ज्ञान भी चल रहा है, क्यों? वो देश घात यानी पार्शल घात करता है, देश यानी पार्शल, एक देश पूरा घात करने के लिए समर्थ नहीं है, परंतु उसमें भी सर्वघाती स्पर्धक है ना। हाँ, परंतु मति ज्ञानावरण में क्या विशेषता होती है? अभी ये मति ज्ञानावरण के जो उदय रूप हम निषेक है उसको देखेंगे, उसमें सभी अनुभाव पड़े हैं। अभी हम उदय रूप निषेक की बात करते हैं। यहाँ सर्वघाती भी थे और देशघाती भी थे, जब वो ऊपर था तभी सेकंड नंबर पर था तो देशघाती सर्वघाती सभी थे। अब जब नीचे आ गया उदय रूप तो सर्वघाती का क्या होगा? देशघाती रूप डन हो गए। वो खीर तो रहे हैं परंतु अपने रूप से नहीं, यानी सर्वघाती रूप से उदय नहीं हो रहा है, इसलिए कहेंगे सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव है फिर भी क्षय हो रहा है, क्योंकि परमाणु तो निकल जा रहे। अभी एक समय ऊपर वो सर्वघाती थे, अब उदय में आते आते देशघाती रूप टर्न हो गए। अब उदय किसका चलेगा? देशघाती। और पर यहां ऊपर भी पड़े ना सर्वत्र सर्वघाती, तो ये नीचे आए तो कहते ऐसा नहीं हो सकता, उसी को कहते हैं उसका उदय नहीं होना, उपशमित रहना। ये उदय में नहीं आ सकते, सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आ सकते। मति ज्ञानावरण जो प्रकृति है उसके सर्वघाती स्पर्धक बंधे थे तभी थे, सत्ता में भी पड़े थे, परंतु उदय रूप होते होते उस एक समय में टर्न होकर देशघाती होकर उदय में आते। तो उसकी अभी हमने परिभाषा कैसे देखी क्षोभम की? ये जो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय नहीं हो रहा है उसका भविष्य का नहीं, उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, यानी उदीर्ण हो जाए और उस रूप अपने रूप से उदय में आवे, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु उदय तो चल रहा है ना, प्रकृति है तो वह उसका तो किस रूप से उदय हो रहा है? देशघाती रूप से। तो देशघाती रूप से उदय चल रहा है, इसी अवस्था को कहते क्षयोपशम। क्षय उदयाभावी क्षय को क्षय कहा और सदवस्था रूप उपशम को उपशम कहा, और देशघाती रूप से उदय होने के कारण वो उसका पूरा आवरण नहीं कर सकता। हमें आपको सबको मति ज्ञान है और हम ऐसा भी देखते हैं, मति ज्ञान यानी इंटेलिजेंस हम कहेंगे कम अधिक होती है ना, आईक्यू हम देखते हैं किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है आवरण वाले, जिसका आवरण अधिक उसका ज्ञान कम। देशघाती भी जो है उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन, असंख्यात अलग अलग प्रकार है, उसके डिटेल में भी नहीं जाएंगे। हमने क्षोभम की परिभाषा देखी है, यानी जो देशघाती प्रकृतियां हैं। अभी प्रकृतियां देशघाती कौन कौन सी वो देखते हैं पहले। ज्ञानावरण में एक केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, ये देशघाती। अभी आपका अवधि ज्ञान है जीतू भाई? नहीं? अच्छा बता रहे, नहीं नहीं तो लाइन लग जाएगी। तो ये अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, फिर भी हमें आपको अवधि ज्ञान नहीं है, मन परे ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। जिसको अवधि ज्ञान हो जाए उसके क्या होगा? वो देशघाती रूप से उदय में आ जाएगा। प्रकृति तो देशघाती है, इसलिए इनके उदय में जो जो ज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे? क्षोभम ज्ञान। मति ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को, अवधि ज्ञान को, मनपरे ज्ञान को क्या कहते हैं? क्षोभम ज्ञान। क्यों? वहां कर्मों की क्षोभम रूप अवस्था पाई जाती है। ये बात क्या है ना, अब आगे देखते हैं हम इसको, फिर अभी पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। ये चौथी लाइन से, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का अनंतवा भाग मात्र जो देशघाती स्पर्धक, उत्कृष्ट अनुभाग वाले जो है वो सर्वघाती वाले है और उसका अनंतवा भाग है वो देशघाती है, उनके उदय होने पर भी उत्कृष्ट अनुभाग का अनंत बहुभाग मात्र जो सर्वघाती स्पर्धक, उनके उदय का अभाव है। क्या कहते हैं? देशघाती का उदय है और सर्वघाती जो है उसके उदय का अभाव है, उसी को क्षय कहा। अभी जो हमने परिभाषा देखी थी क्षोभषम की, वही बात यहां बता रहे हैं। और वे ही सर्वघाती स्पर्धक जो उदय अवस्था को प्राप्त न हुए हैं, परमाणु उदय में नहीं आ रहे ऐसा नहीं कहा, उस अनुभाग का उदय नहीं हो रहा ये बात कही। क्या मैं यही ना बात, परमाणु का उदय तो चल रहा है मतलब, तो उस अनुभाग सहित नहीं हो रहा
मैडम, इनकी उदीर्णा भी नहीं
हो, नहीं हो, उसी तो कहते हैं। अगर उदीर्णा उदीर्णा होकर भी उदय हो जावे तो सर्व पूरा घात हो जाएगा। उनकी सत्ता अवस्था वह उपशम, उनकी प्राप्ति वह क्षोभषम लब्धि जानना। यहाँ केवल यहाँ क्षोभषम को, यहाँ क्षोभषम ऐसे भी है ना, जिसको जितना ज्ञान है उसको भी क्षोभषम लब्धि कहते हैं। एक इंद्रियों को स्पर्शन संबंधी ज्ञान है तो उसके उतनी एक इंद्रिय संबंधी क्षोभषम लब्धि ऐसा कहेंगे, वो बात अलग है। और यहाँ जो सम्यक तो होने के पहले जो पांच लब्धि है वहां जो क्षोभषम लब्धि कही है उसकी बात है। यहाँ कंडीशन क्या है, प्रति समय अनंतवा भाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग होकर उदय में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, पांच नंबर को पढ़ेंगे। आदिमलद्धि भवो जो भावो जीवस्य साद पहुदीनम सत्थानम पयडीनम बंधन जोगो विशुद्ध लब्धिसो। आदिमलब्धि भवोय भावो जीवस्य सात प्रभृतीनां शस्तानां प्रकृतीनां बंधन योग्यो विशुद्धि लब्धिस। देखो हम गाथा में से पढ़ेंगे, संस्कृत ज्यादा आसान होगा। आदिमलब्धि, पहली लब्धि कौन सी, क्षोभषम लब्धि। भवोय यानी जिसको पहली क्षोभषम लब्धि हुई है उसके, उस जीव के, जीवस्य क्या होता है भावो, ऐसा भाव कैसा है, सात प्रवृत्ति नाम, प्रवृत्ति यानी एक्सेट्रा आदि वगैरह वगैरह, सात यानी साता वेदनीय आदि, प्रवृत्ति यानी इत्यादि आदि एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ऐसा यानी शस्त यानी प्रशस्त, शस्ता नाम प्रकृति नाम यानी प्रशस्त प्रकृतियों का, प्रशस्त प्रकृतियां नहीं शुभ प्रकृतियां कहाँ पाई जाती है, ज्ञानावरण में के दर्शनावरण में, नहीं अघाति में, घाती जो है ना सारी अप्रशस्त है। प्रशस्त कहाँ होगी, अघाति में दो टाइप है, प्रशस्त भी है और अप्रशस्त भी है। साता वेदनीय प्रशस्त है, असाता वेदनीय अप्रशस्त है, देवायु मरण मनुष्यायु और तिरियंचायु प्रशस्त है, नरकायु अप्रशस्त है। नाम कर्म में बहुत सारी प्रशस्त है बहुत सारी अप्रशस्त है, उसकी लिस्ट हमने देखी थी पूर्व में। और क्या रह गया अभी, गोत्र में उच्च गोत्र प्रशस्त है, नीच गोत्र अप्रशस्त है। तो यहाँ कहते हैं शस्ता नाम प्रकृति नाम बंध योग्यो भावो, प्रशस्त साता आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध योग्य भाव जीव के, कौन से, जिसको पहली लब्धि है ऐसे जीव के, साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के जो बंध का भाव है उसको स विशुद्ध लब्धि, वह विशुद्ध लब्धि है। हमने देखा ना, क्योंकि सभी कर्मों का अनुभाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग अनंत भाग होकर उदय में आ रहा है, तो वो सारा मिथ्या तो भी मंद हो रहा है और चारित्र मौनि भी मंद होकर उदय में आ रहा है, तो जीव के कैसे मंद कषाय रूप भाव हो रहे। अब हम टीका पढ़ेंगे। पहली जो क्षोभषम लब्धि उससे उत्पन्न जो जीव के साता आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारण रूप धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं, उसकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है। हम जब क्रम से देखेंगे एट ए टाइम, जब सभी उपलब्धियों की बात जब आती है, चारों एक साथ शुरू होती है, जिसकी ऑलरेडी देशना मिली है वगैरह वगैरह, उसकी बात नहीं, हम ये साधारण बात करें। कोई क्षोभषम लब्धि वाला है और उसी समय उसके विशुद्ध लब्धि भी है, यानी वो कैसा है, मंद परिणामी है। अभी देशना मिली नहीं है उसकी, परंतु ऐसी कोई जिज्ञासा है उसके, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जैनी हो तो ही उसके ये सब हो जाए। अभी तो देशना भी नहीं मिली है कोई भी जीव, हमने तो चारों गति वाला भव्य मिथ्या दृष्टि आदि आदि बातें देखी थी, तो उसके किसी के सहज रूप से जिज्ञासा रूप मुझे तत्व ज्ञान की सुनना है क्या, यही कुछ होगा, उसी में माल है, बाकी क्रियाओं में कुछ नहीं, ऐसा आपको लगता था ना अंदर से, मुझे तत्व ज्ञान सीखना, ऐसा कोई जो जिज्ञासा रूप भाव उत्पन्न होता है तो उसमें ऐसी बातें होती है। ये जरूरी नहीं कि वो प्रकट होगी। तो एक शोषम लब्धि और विशुद्धि लब्धि यहाँ जो है, तो यहाँ कहते हैं धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम, यानी कहीं पर अगर शास्त्र स्वाध्याय चल रहा या कोई आत्मा परमात्मा की बात या मोक्ष मार्ग की बात चल रही हो तो उसको तो इतना तो अंदर से ऐसा उत्साह कहो, अंदर से ऐसा परिणाम होता है, चलो सुनो तो सही क्या कहते हैं। नहीं तो हम देखते हैं जिसके विषयों में अधिक अनुराग है, ये धर्मानुराग है, और दूसरा विषयानुराग, उसको तो ऐसी बातें कोई करता है तो भी अंदर से चिढ़ होती बहुत बहुत, जैसे हम तेल उबालने को रखते हैं और उसमें ठंडा जल डालें तो क्या होगा, आपने देखा है ना। ऐसे ही जो तीव्र विषय राग वाला जो जीव है उसको ऐसी जो बातें अगर रुचेगी नहीं, नहीं उसके तो बिल्कुल इतना गुस्सा आता है उसको, और उसके साथ और बाकी दुनियादारी की बातें करो, खबरें सुनाओ उसको, मूवी ले चलो और क्या क्या, अभी पता ही नहीं आजकल क्या क्या चलता है, तो उसको तो मजा आएगा, खर्चा करके भी आपको ले जाएगा कहीं और घूमने को, परंतु ये बातें सुनाने जाओ तो बिल्कुल वो अंदर से गर्म हो जाएगा एकदम। तो कहते यहाँ क्या है, धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम, क्योंकि इसके बिना वो सुनने को क्यों जाएगा। जिसको विषयों में रुचि है या धर्म के प्रति या जो बातों जो कोई सुना रहा है उसी के कल्याण की, उसके प्रति भी जिसको नफरत होती है वो सुनने को जाएगा क्यों, तो उसको देशना कैसे मिलेगी, ये बात कही। उसकी प्राप्ति वह विशुद्धि लगती है, ये दोनों एक साथ है, परंतु जिसके क्षोभक्षण होती है उसी को होती है, कहने का प्रयोजन क्या है। ये सभी कर्मों का अनुभाग अत्यंत हीन होकर उदय में आ रहा है। अशुभ कर्म का अनुभाग घटने पर, यानी जो सत्ता में है वो घटकर उदय में आ रहा है, और साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंद हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, उसके अभी शुभ परिणाम हो जाए। यानी पुराना बंधा हुआ सत्ता में पड़ा हुआ अशुभ कर्म मंद 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 होकर उदय में आता है, और नया तो पुण्य प्रकृतियां बंधी इस काल में, यहां तक आ गए हम। अशुभ कर्म का अनुभाग घटने पर संक्लेशता की हानि और उसके प्रतिपक्षी विशुद्धता की वृद्धि होना युक्त ही है। अकेला संक्लेश और विशुद्धि कहो या संक्लेशता और विशुद्धता कहो, एक ही बात है, कहीं कोई शब्द यूज होते हैं। तो ये हमने दो लब्धियों का स्वरूप देखा, कौन सी दो देखी, लक्ष्मी क्षोभक्षम लब्धि और विशुद्धि। अब तीसरे का नाम क्या है, देशना लब्धि को देखेंगे अभी। आगे देशना लब्धि का स्वरूप कहते हैं, ये छह नंबर की गाथा पढ़ेंगे। छतो पले सयर सूर्य पहुदिला हो जो लेसिद पदार्थ धारण लाहो वात दियल दीदो षड द्रव्य नव पदार्थो प्रदेश कर सूर्य प्रभृति लाहो देशित पदार्थ धारण लाहो वा तृतीय लब्धिस्तु। यह तृतीय लब्धि है यानी देशना लब्धि है, कौन सी, षड द्रव्य। ये षड द्रव्य कभी सुना है क्या, हाँ जीतु भाई, छह द्रव्य नाम याद है ना, बोलो क्या है ये सारे द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये छह द्रव्य और नौ पदार्थ। नौ पदार्थ कौन से वीरेश भाई, पदार्थ किसको तत्वों के आगे पुण्य पाप जोड़ देना, जीव तत्व अजीव तत्व आश्रय बंद पहले कहो ना, आश्रय बंद पुण्य पाप उसमें ले लेना, आश्रय में भी और बंद में भी। बहुत दिन हुए ना, अब बोलो अश्विन भाई नौ पदार्थ बोलो।
जीव अजीव
क्या, जीव अजीव
तत्व
बंद
तत्व
उसको पदार्थ भी कहेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमने नौ पदार्थ कहने की पद्धति और सात तत्व कहने की पद्धति। अभी यहाँ तो उसका विषय नहीं है, परंतु इसको बहुत विस्तार से सही रूप से जानना जरूरी है। तो छह द्रव्य नव पदार्थ यानी क्या, छह द्रव्य नव पयत्थ, नीचे देखो संस्कृत में षड द्रव्य नव पदार्थो उपदेशक, उपदेशकर उपदेश देने वाले, किसका उपदेश देने वाले, पैसे कैसे कमाना, कहाँ पैसा डालना, चांदी में क्या सोना में। तो कहते षड द्रव्य और नव पदार्थों का उपदेश देने वाले उपदेश कर कौन, सूर्य प्रभृति, ये प्रभृति शब्द फिर आया, सूर्य का अर्थ क्या है, आचार्य आदि, आचार्य आदि ने मूल में मूल तीर्थंकर, हाँ क्योंकि मूल उपदेश तो वहां से चला आया, सर्वज्ञ का उपदेश वो उपदेश और उनकी परंपरा में आचार्य उसी का उपदेश देते हैं। तो आदि में मूल तो तीर्थंकर है, गणधर दे लेंगे, आचार लेंगे, उपाध्याय साधु, पंचम गुणस्थानवर्ती या चौथे गुणस्थान, ज्ञानी जो होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो उपदेश देने वाले इनका लाभ एक बात, तो उसको देशना लदि वो कहेंगे ना, देशना कहेंगे, देशना अलग है, उपदेश को देशना कहेंगे। लब्धि कब कहेंगे, हमें प्राप्ति हो तो लब्धि, वहां उपदेश चल रहा है और हमें देशना लब्धि हो जाए, ऐसे होते क्या। तो देशित पदार्थ, देशित न उपदेशित, तो देशित पदार्थ है ने जिन ये छह द्रव्य नौ पदार्थ और उनका स्वरूप जो बताया है, तो उसके पदार्थों के धारण, धारण करना है ना क्या, देखो पहले में पहले सुनना, सुनेंगे ही नहीं तो कहां से वो धारण होगा, श्रवण ग्रहण यानी वो समझना चाहिए, जो सुन रहे हैं वो समझ में ही नहीं आवे तो क्या फायदा, हम कोई तेलुगु कन्नड़ में कुछ सुन रहे तो क्या क्या सुना क्या पता, ऐसे जब ये भाषा ही मालूम नहीं है तो भले सुने कि हाँ सब लोग आहा कर रहे तो हम भी कर रहे हैं, तो इनके कांजी स्वामी को पहले सुनते थे ना, कुछ नहीं समझता था, मैं तो एक एक शब्द लिख के भी रखती थी पर कुछ नहीं समझता था, बस समझानों का है आहा हा हा, एकदम प्रमोद पूर्वक हंसते थे। जब ये द्रव्य गुण पर्याय छह सात तत्व वगैरह सबकी जानकारी हुई तब उनमें कितनी गहराई थी, फिर वो नोट्स निकाल के देखे तो अरे बापरे इतना तो कितना माल है इसमें, पहले इसकी गहराई ख्याल में नहीं आती, हम बस शब्द सुनते हैं, जैसे हिंदी या गुजराती जो कुछ बोलते हैं तो वो सुनाई तो देते हैं, उसके अर्थ ऐसा बस ऊपर ऊपर सुना इतना ही हो जाता है।
हाँ।
बस वो बड़े है कोई व्यक्ति और वो हम बस सुन बैठेंगे और सुनेंगे, अर्थ नहीं समझे उससे कुछ नहीं फायदा। कितनी गहराई और सूक्ष्म बात कहते थे वो यदि ख्याल में आ जावे तो कल्याण हो जाए जीव का, ऐसी बातें। तो यहाँ लिखते ना क्या, देशित पदार्थ धारण यानी पहले में पहले सुनना, फिर दूसरी कंडीशन है समझना, क्योंकि समझेंगे नहीं तो उसके क्या है, कुछ नहीं फायदा उसका, और तीसरी बात याद रखना चाहिए क्योंकि बाद में उस पर विचार चलेगा कि जो सुन रहे हैं वो हमने क्या पहले माना था अब क्या सुना है, उसकी कंपैरिजन तो होगी ना मन में, और बार बार उसके ऊपर सूक्ष्मता से विचार चलेगा तत्व निर्णय तक पहुंचने का, जो ज्ञान में ही सब बातें चलेगी, ज्ञान ही अपना ज्ञान अपने पास है वही सारा कार्य करने वाला, और कोई आकर अपना कार्य करने वाला नहीं, और नहीं कुछ समय दर्शन दिलाने वाला, ज्ञान में निर्णय होना, क्लैरिटी होना, उसमें ही विशुद्धि भी बढ़ेगी, वो सारे वो परिणामों में आगे आगे चलेगी। तत्व ज्ञान की निर्मलता यही है वहां, ये जो विशुद्धि भी बढ़ेगी आगे प्रायोगिकता लब्धि में, करण लब्धि में जो कुछ होगा वो ज्ञान की निर्मलता से ही कार्य होने वाला है। और वो तो अपने पास है ना, मौजूद है, कि कहां से लाना है ज्ञान बाहर से है? देखो क्या कहते हैं, देशित पदार्थ धारण, यानी पहले में पहले श्रवण यानी सुनना, ग्रहण यानी समझना, धारण यानी याद में रखना, निर्धारण यानी ये ऐसे ही है, ऐसे अपने स्वयं के ज्ञान से उसको नक्की करना, जिसको हम तत्व निर्णय करेंगे, और फिर होगा परिणमन, कि उस रूप परिणमन सहज होगा, कि नक्की कर लिया है, यानी हमने तो माना यही सच्चे देव है, फिर भी परिणमन नहीं हुआ है, अभी और भी सबके आगे जाके माथा रगड़ता है, तो उसने तो निर्णय ही नहीं किया, उसका निर्णय ही नहीं हुआ। निर्णय हो और परिणमन न हो ये बात नहीं बन सकती, तो ये सारा ही देशना लब्धि में आता है। तो इसको उसका लाभ होना, तो देशना लब्धि ये कौन से गुण की पर्याय होगी? जीतू भाई आप कह सकते हैं? आप तो नहीं कहेंगे, कौन कहना चाहते हैं? सुशीला बेन, देशना लब्धि कौन से गुण की पर्याय है? हाँ बोलो बोलो।
मुझे तो श्रद्धा गुण की लगती है।
श्रद्धा गुण की लगती है, आपको क्या कहते हैं?
क्योंकि निर्णय करना,
देखो लाभ कहाँ, देशना का लाभ होना यानी वो समझना, सुनना, ग्रहण करना, उस पर विचार करना, ये ज्ञान की, ज्ञान गुण की पर्याय। देखो अभी टीका पढ़ेंगे हम, कोई प्रश्न है?
श्रद्धा गुण के साथ में जो होती है वो कैसे होती है, ये उसमें अपना पंडा दिया वो श्रद्धा गुण।
देखो देखो ये सब ऐसा कोई एक श्रद्धा वहां बैठा और ज्ञान वहां बैठा ऐसा तो ही नहीं, द्रव्य ही अखंड है, द्रव्य ही ज्ञान कर रहा है, द्रव्य ही श्रद्धा रूप परिणमित हो रहा है, तो सही ज्ञान होते ही उसकी श्रद्धा भी वैसे पलट जाएगी। समझने के लिए हम बिल्कुल उसको बिल्कुल डिसेक्शन करके ये गुण ये गुण ये गुण ये गुण ऐसा कह रहे हैं, है ना, द्रव्य गुण पर्याय एंटिटी तो एक है, एक अखंड है, तो द्रव्य स्वयं ही जान रहा है, वो तत्व निर्णय करेगा, जीव हम कहेंगे अभी उसको, पूरा अखंड जीव है, तत्व निर्णय करेगा, तो उसमें श्रद्धा में भी वैसे यथायोग्य परिणमन हो जाएगा। तत्व निर्णय नहीं है तब तक वो श्रद्धा में भी वो नहीं है, इसलिए वो ज्ञान से ही होता है ऐसा कहेंगे ना।
फिर भी माने समय साथ में बहुत सी जगह पे किसी को इस समय दर्शन का, किसी को इस समय ज्ञान का, किसी को इस समय चर्चा,
वही तो बात है, यानी जो अभी मोक्ष मार्ग पर्याय प्रकट होगी वहाँ सब है, उसमें समय दर्शन भी है, समय ज्ञान भी है, समय चर्चा भी है, ये तो अपेक्षा अलग अलग होती है, जब उसमें अगर भेद करके कथन करना है तो हम उसको एक एक को अलग अलग बताएंगे, हम कहेंगे ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का कुछ करता ही नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, ऐसा कहने में क्या सर्वथा भिन्न है, वो करता नहीं करें, क्योंकि हम अगर गुण की बात करें तो एक गुण का कार्य उसके अपने में हो रहा है, वो दूसरे गुण में कुछ नहीं कर रहा, परंतु द्रव्य अखंड अभेद है तो उसी में ज्ञान चल रहा है, उसी में श्रद्धा भी, एट ए टाइम सबका कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा, तभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। छह द्रव्य नौ पदार्थ का उपदेश दे करने वाले आचार्य आदि का लाभ, आदि में हमने तीर्थंकर से लेकर चौथे गुणस्थान तक के जीवों को देखा, उनके उपदेश की प्राप्ति। देखो ज्ञानी भी है और उपदेश देगा, बच्चों का घर में रहता है, बाल बच्चों वाले हैं, तो अपने बच्चों को व्यापार धंधा संबंधी उपदेश देगा कि नहीं देगा, उसको देशना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये छह द्रव्य नौ पदार्थ, उसमें सच्चे देव गुरु शास्त्र उनका स्वरूप, स्वपर भेद विज्ञान, बहुत सारी बातें उसमें आ जाएंगी, मोक्ष मार्ग, ये सारा जो उपदेश है ये स्वपर भेद करने के लिए कार्यकारी, वो सारा ही उसमें मोक्ष मार्ग का उपदेश इसमें आ जाएगा, वो देशना में होगा। अथवा उपदेशित पदार्थ के धारण करने की प्राप्ति, इन्हें समझकर याद रखने की प्राप्ति। प्राप्ति तो जीव की हो रही है, प्राप्ति होने नहीं याद रखना, सुनना समझना याद रखना, यह तीसरी देशना लब्धि है। तू शब्द से नारकादि में, यानी जो नरक में जो जीव है उनमें, जहां उपदेश देने वाला नहीं है, वहां पूर्व भव में धारणा में लिए हुए तत्वार्थ के संस्कार के बल से, क्या कहा इसका अर्थ देखते हैं। अभी देव भी नरक में जाते, तीसरे नरक तक जाते, वहां उपदेश भी देते हैं। नीचे के नरकों में चौथे पांचवे छठे सातवें, वहां कोई देव जा नहीं सकते और वहां कोई उपदेश देने वाले भी नहीं है। तो हमने तो देखा था चारों गति के जीवों को ये समय दर्शन होता है, पीरियंचों के भी होता है, तो उनके कौन उपदेश देता होगा। हाँ ठीक है, जो समो शरण में जाते हैं पीरियंच उनके तो होता है, या जो कोई जैसे महावीर को जीव के आचार्य उनके द्वारा भी उपदेश मिला था, परंतु ऐसे भी हो गए ना कि जिनको कोई उपदेश देने वाला नहीं है, मनुष्य लोक के बाहर कौन उपदेश देने वाला होगा उनको। तो कहते वहां कैसे हो सकता है, तो क्या कहते यहाँ पर, पूर्व भव में, यानी उस भव के पहले धारणा में लिए हुए। धारणा में लिए हुए का अर्थ क्या है, अभ्यास तो किया था, तत्व सुने थे और याद रखे थे, उस रूप परिणमन नहीं हुआ था, इसलिए भी नरक या तिरंच में जन्मा है, परंतु उसके धारणा में वो ज्ञान की पर्याय में चल रही है, संस्कार उपस्थित। ये संस्कार जो है वो ज्ञान की पर्याय है। संस्कार हमने बच्चों पर संस्कार डालते, उस संस्कार की बात नहीं है, क्योंकि संस्कार संस्कार शब्द तो सब लोग यूज करते हैं, हम उसका सही अर्थ नहीं समझते, क्योंकि हमारे लौकिक भाषा में भी हम कहते हैं संस्कार डालने चाहिए, बच्चों पर संस्कार अच्छे होने चाहिए, कैसे वो बिहेव करना, बिहेवियर के आचरण के संबंधी, उस संस्कार की बात नहीं है। जब संस्कार जब कहते हैं तो मति ज्ञान में हम क्या कहते हैं, अवग्रह इहा अवाय और धारणा, तो जो बातें धारणा तक पहुंचती है वो संस्कार रूप से चलती रहती है और कालांतर से उसकी स्मृति हो सकती है। जो धारणा तक नहीं पहुंची है और संस्कार रूप से जो नहीं चल रही है वो तो उसकी तो स्मृति भी नहीं होगी। आपने सेव किया होगा तो मेमोरी में उसको निकाल सकते हैं ना बाद में, क्यों नहीं, तो क्या होगा, चला जाएगा, ऐसा ही उसमें भी होता है। बिल्कुल संगीपना। हाँ हाँ पहले बता दो, बता दो नलिन भाई, संस्कार क्या है, द्रव्य है, गुण है, क्या पर्याय, संस्कार, संसार नहीं, संस्कार तो द्रव्य नहीं है, छह द्रव्य में उसका नाम नहीं है, संस्कार नाम का कोई गुण नहीं है, तो क्या है, पर्याय है। कौन से गुण की, जीव के ज्ञान गुण की पर्याय संस्कार, यानी वो संस्कार किससे होता है, जो बातें धारणा तक पहुंची है वो हर ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञान चलता रहता है, जब वो स्मरण में आवे और उसका यूटिलाइजेशन हो जाए, जीव तत्व निर्णय के लिए उस तत्वों पर विचार करे तब वो कार्यकारी कहलाएगा, नहीं तो वो धारणा में है, वो इस संस्कार से काम हो जाएगा ये नहीं, वो फिर उसके ऐसे कुछ हो जाता है ना कि विचार करने लगता है नारकी, अरे इतनी वेदना से मैं पीड़ित हूँ, ये ऐसा क्यों, तो कभी कभी अवधि ज्ञान से या ऐसे उसको वो तो कुछ ख्याल आता है, तत्वों का भाषण होने लगता है, वही शब्द याद आएगी ये जरूरी नहीं है, परंतु उसने जो कुछ उसका उस भाव भाषण भी हुआ है उसको, जैसे हमें राग उसको दुख रूप लगते हैं और अपने मैं ज्ञान में ये राग भिन्न है, इस तरह से उसको जो कुछ तत्व विचार के काल में शुरू हो जाएगा उसके तत्वों के, तो वो उसने पहले जो सुना था और वो स्मृति में अभी उसने लाया है और उस पर उसका विचार चलेगा, तो उसको भी क्षोभम लगती है, विशुद्धि लगती है, देशना लगती है, देशना लब्धि तक नहीं ना, तो कितने भवन तक कार्य करेगा देशना, ऐसी तीन भवन तक, परंतु वो संगी पंचेंद्रीय होना चाहिए, बीच में एकेंद्रीय में चला जावे तो वो तो संस्कार रहेगी नहीं ना उसके, देखो ज्ञान की पर्याय संगी के योग्य होगी तो भी वो तो संस्कार चलेगा, एक इंद्रिय में वो कैसे रहेगा, क्योंकि एक इंद्रिय के योग्य ज्ञान पर्याय होगी, उसमें वो संगी पंचेंद्रिय वाले संस्कार वो नहीं रहेंगे। तो उस भव में तो उसने नहीं सुना है, पूर्व भव में सुना है, वो ख्याल में लेता है और उसको समय दर्शन प्रकट। आगे चलकर अभी और भी दो लब्धि देखनी है हमको, तो उसको क्या कहेंगे? देखो सत्वार सूत्र में भी सूत्र है कि समय दर्शन जो होता है वो कैसे होता है, समय दर्शन और वो निसर्गज या अधिगम अधिगम से होता है। तो निसर्गज होता है अधिगमज, अधिगमज यानी ज्ञान द्वारा, यानी कोई उपदेशक मिले है, देशना मिली उस भव में, तो उसके कोई गुरु कोई समझाने वाले उसको मिले थे, तो उसको कहेंगे ये अधिगमज है। और हमें ऐसे देखते किसी को कोई मिले नहीं है, वो स्वयं ही स्फूर्त ऐसे उसको हो जाता है, जयेन्द्र भगवान को देखते या कुछ ऐसे स्वयं ही पढ़कर भी अर्थ निकाल लेते हैं। तो उसने कैसे निकाला? क्योंकि सुनने को देशना कहते हैं, पढ़ने को नहीं कहते, तो पढ़कर उसका सही अर्थ क्यों भाषित हो रहा है? सब पढ़ते सबको नहीं भाषित होता है। तो हम कहेंगे वो तो पूर्व की सुनी हुई देशना है, और ये अभी पढ़कर या भगवान को देखकर मूर्ति को देखकर भी वो बातें उसकी धारणा में है, संस्कार में है, तो वो तत्वों में आ जाती है, विचारों में आ जाती है, तब हम कहेंगे उसकी देशना लगती है उसकी, और उसको निसर्गज कहेंगे। परंतु सर्वथा निसर्गज होता ही नहीं। क्या कहा? सर्वथा निसर्गज, पूर्व भव में भी उसको देशना लब्धि नहीं मिली और उसको समय दर्शन हो जाए, ऐसे होता नहीं। ये बिल्कुल समझना ठीक तरीके से, यानी ज्ञानी की देशना सुनने वाली, सुनकर ही होगी उसका निर्णय, क्योंकि पढ़ते तो सब है, और हम जो पढ़ते उसका एक ही अक्षर तो होते है, संख्या शब्द संख्या है, और अर्थ तो अनंत है, और हमारे जो लौकिक में यही शब्द भी आते हैं और उसका अर्थ हम हमारी कल्पना के अनुसार उसका अर्थ करने जाते हैं, तो हमें सही नहीं। इसलिए ज्ञानी जो जीव खोलकर समझाता है अर्थ, ज्ञानी ने सर्वज्ञ की बात उस बताता है, वो अपनी नहीं, उसकी सर्वज्ञ परंपरा से जो बातें चली आ रही है और ज्ञानी ने उसका अनुभव करके वो बताई है, तो उसको देशना कहेंगे।
मैडम ये सारी कंडीशन प्रथम ऑप्शन के लिए है,
प्रथम ऑप्शन के लिए, क्योंकि क्षोभम के लिए सभी पांचों लब्धियों की बात नहीं है, उसमें तो जो कुछ कितने करण होते हैं, क्या करण होते हैं, वो तो उसका अलग विषय है। एक एक समय की
है।
देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि पर्याय तो एक समय की है, तो एक समय वाली पर्याय ज्ञान की पर्याय वो कैसी है? लब्ध और उपयोग मिलकर है, यानी अभी उपयोग रूप ज्ञान में क्या चल रहा है और उसके ऑलरेडी वो लब्ध रूप में क्या चल रहा है, कितनी योग्यता भी है और कितना उसने जाना है, ये संस्कार वाली बात हर पर्याय में उतनी की उतनी की उतनी की चलेगी, तो हम कहेंगे उसका संस्कार चले आ रहा है। यदि बीच में वो ब्रेक हो जाए, निकल जावे, धारणा में से भी निकल जावे, तो उसका कुछ कार्य नहीं है। क्या हमने कभी पहले भवों में कभी सुना नहीं है, तीर्थंकरों के संवसरण में कभी गए नहीं है, तो वो धारा टूट जाएगी संस्कार की। वो ऐसा नहीं कि वो तो एक बार सुना तो कायम रहता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। बीच में असंगी हो जाए तो छूट जाए, संगी रहते हुए भी छूट जाए। हम अपनी बात करते हैं लौकिक की, बचपन में माता पिता कुछ बातें कहते थे, अरे बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं, तो तभी तो ध्यान में नहीं लेते कुछ, उस पर कुछ गौर नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, बाद में बड़े होने पर माता पिता रहे या नहीं भी रहे, तो उनकी वो एक एक बात स्मरण में आती है और फिर हम उस पर विचार भी करते, फॉलो करते। तो अभी तो नहीं सुना ना, पहले सुना था, वो अभी कार्य कर रहा है, तो वो संस्कार चल रहे थे और जब उसके स्मरण में आया कहो, या उसने वो विचारों में लिया, उस पर विचार किया, वो सही भाषित हुआ, तो उसका वो कार्य हो। तो क्या कहें, हमारे पिताजी का उपदेश था, जब वो उपदेश देते थे तो तुम नहीं मानता था, अभी मानने लगा, फिर भी कहेंगे ना उनके उपदेश से ये हुआ, ऐसी बात है।
पर्याय
पर्याय
उसमें कुछ चीजें ऐसी है कि बाद में भी हुई,
वो हर नई पर्याय अपने से नई हुई है। एक पर्याय का पूर्व पर्याय में तो अभाव है, अभी आपका यह विषय यहाँ नहीं हुआ है, फिर भी हर नई पर्याय उतनी योग्यता वाली हो रही है, तभी तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूएशन धारा चल रही है। अकेले संस्कार की बात करेंगे तो ये मिथ्या तो भी अनादि से चल रहा है, तो संस्कार से सब कुछ हो जाता तो वो मिथ्या ज्ञान कहो या वो उसके भी संस्कार चले ऐसा हम कहेंगे। तो अकेले संस्कार के भरोसे मत रहना ही सके थे, अरे जो कार्य अभी हो सकते वो कभी आगे के भव में संगी होना चाहिए, फिर ये सारी बातें वहां याद आनी चाहिए, अभी इसमें लक्ष्य नहीं दे रहा, तो हम स्वर्ग में जाएंगे फिर वहां से समोशरण में जाएंगे, बस यही ना। आपने सुना होगा कि नहीं सुना? नहीं सुना है? हमने तो बहुत सुना है, अभी पुण्य कमाओ स्वर्ग में जाओ और फिर वो महाविदेह में चले जाओ सिमंदर भगवान के पास, हाँ हाँ, वहां भी कोई जुगमंदर वो बाहु स्वभाव कोई नहीं चले, ना मैं मालू नहीं। तो कहते अभी इतने थोड़े अनुकूल संयोग है वो छोड़कर सुनना नहीं चाहते, और स्वर्गों के कितने अनुकूल संयोग, सब कुछ विषय सामग्री सब उपलब्ध है, वो छोड़कर जाएगा उधर, जिसकी यहाँ रुचि नहीं वो वहां की वायदे करते हैं। तो मैं यही बात, अभी जो कार्य हो सकता है ना, तो वहां और यहाँ के संयोगों में क्या रखा है, वो कितनी प्रतिकूलता और कितने अपने मन के अगेंस्ट बातें होती रहती है, हमने जैसा सोचा वैसे होता रहता है क्या, उलट पुलट कुछ भी होता रहता है, वो तो संयोग तो अपने आधीन है ही नहीं है, हमारी उसमें सुख बुद्धि पड़ी है इसलिए हम सही बात कल्याण वाली बात छोड़कर संयोगों के पीछे दौड़ते रहे। हर भाव में यही तो किया है, मौका नहीं मिला था ऐसा तो है ही नहीं है, अनादि से अनंत 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 हमने जन्म मरण किए है, कितनी बार मौका मिला होगा, और जीव जब सही मौका का वो लाभ लिया तो ही उसके कुछ कार्य करे, तभी उसने सुना कहेंगे हम, केवल सुना बस रट लिया हो गया काम ऐसा भी नहीं है, उस पर वो विचारधारा चलेगी तब तो विचार में डूब जाएगा तो उसको समय दर्शन हो जाएगा, है तो आसान बात, परंतु हम उतना ही बस, यानी जिसको कहें ना थोड़ा करके समाधान मान के छोड़ लेंगे, ये तो सारे ज्ञान में ही होने वाला, और ज्ञान ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा बैठ के कुछ करना चाहिए ऐसी बात नहीं, जब जाना है ये तत्वों के बारे में तो दिन भर वो बातें सिर में विचारों में आएगी, घर में कोई शादी है क्या है कितने विचार आते हैं ना लक्ष्मी जी। ऐसा होता है कि उसके विचार उसके कोई, हमने ऐसा एक जगह बैठकर ऐसा नहीं करना, वो तो दिन भर वही कुछ काम कर रहे तो अरे ये करना रहेगा वो करना रहेगा, तो जब तत्व की बातें सुनेंगे सच्ची गहरी रुचि से उसमें रुचि हो जाए तो हर चीज में उसकी याद आएगी, हर समय हर चीज में वो हम अप्लाई करेंगे, निमित्त से कार्य नहीं होता, और हमें क्या लगता है तो ये जो सुनी हुई बातें है उसका एप्लीकेशन हर वो अपने आप चलेगा, ये कि जरूरी नहीं कि प्रयोग कैसा करना, ये करना क्या जरूरी है कि किसी को जबरदस्ती की क्या बात है, क्योंकि वस्तु स्वरूप समझ में आया है तो सही रूप अप्लाई होते चला जाता है, वो करना नहीं पड़ता सहज रूप से हो जाता है, ये आता है ना ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही, ये ज्ञानाभ्यास तो मन में ही चलेगा, एक घंटा सुनेगा परंतु 24 घंटा वो बात वो धुन चलती रहेगी उसके अंदर से तो तब हो जाएगा, वो तो ज्ञान में ही होती रहती ना बात। देखो यहाँ क्या लिखा, पूर्व भव में, ये नारकी आदि की बात चल रही है ना, पूर्व भव में धारणा में लिए हुए तत्वार्थ के संस्कार के बल से, तत्वार्थ है ना अभी हमने जो तत्वार्थ है पदार्थ और उसका तत्व उसका वह पना जो हमने सात तत्व कहो या नौ पदार्थ को, अभी जो द्रव्यों की बात चल रही तत्वार सूत्र में यही बात चल रही, द्रव्य का स्वरूप कैसा है तो उत्पाद हुए द्रव्य स्वरूप है वो सद्रव्य लक्षण बताया है, आगे चलकर देखेंगे गुण पर्यव द्रव्य, ये पूरा निश्चित करना पड़ेगा, छो द्रव्यों का स्वरूप अपने स्व का स्वरूप निश्चित करेंगे उसकी परिणाम व्यवस्था को निश्चित करेंगे, ये सारे उसमें सिद्धांत आ जाएगा, निमित्त उपादान संबंधी क्रमबद्ध पर्याय संबंधी और वो ऐसे ही है, ऐसे हम तत्व निर्णय से वहां तक पहुंचे। किसी ने सुनाया और हमने हाँ बाबा मान लिया, वो बात नहीं चलेगी, क्योंकि दूसरा और जबरदस्त सुनाने वाला कोई मिलेगा तो वैसा लगेगा। तो उस संस्कार के बल से, यानी ये जो ज्ञान में लिया है उसके बल से, ज्ञान की बात यहाँ पर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जानना, ये ज्ञान से होता है, अधिगम से होता है, ऐसा कहेंगे हम, ये निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। अब यहीं रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान से